नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 130वीं जयंती के अवसर पर रूबरू होने जा रहे पूर्व परियोजना अधिकारी संपूर्ण साक्षरता अभियान संसद एवं पूर्व प्रधान पाठक सेवानुत्त। तो नमस्कार सर जी।
नमस्कार, जय भीम।
जैसा कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती संपूर्ण देश में मनाई जाना है, क्योंकि आज कोविड के कारण यह जयंती आज घरों में ही मनाई जाएंगी, इस संबंध में आप जिलेवासियों को और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हाँ, मैं जिलेवासियों को प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहूँगा। मैं सबसे सर्वप्रथम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की जयंती पर जिलेवासियों को प्रदेशवासियों को जय भीम जय भारत। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती पर थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि हम लोग इस कोविड महामारी के कारण जो है, जो उत्साहवर्धक वातावरण में हम जयंती मनाते थे, समस्त भारतीय लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते थे, वो नहीं मना पा रहे। और ये कोविड का प्रभाव, दूसरा सेकंड प्रभाव इतना प्रभावी हो गया है कि हर एक मोहल्ले पड़ोस में कोविड के पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं इस जयंती पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जब भी मनाई जाती है, इसका महीना भर कार्यक्रम चलता है। कोई जरूरी नहीं कि आज ही हम ये 14 प्राय वर्ष भर भी चलता है, लेकिन प्राय प्राय हमने ये देखा कि लगभग एक महीने तक अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाते हैं।
सर जी, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक वाक्य है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो इस वाक्य के माध्यम से आप अपना संदेश जिलेवासियों को दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज से लगभग आजादी के पूर्व में SC ST के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार होता था, उस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, क्योंकि अपने अधिकार को पाने के लिए बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता। और बाबा साहब का जीवन चरित्र ही यही बताता है कि उन्होंने बहुत कठिनाई से अपने जीवन को संघर्षमय बना के रखा, तभी जाकर इन्होंने अपने भारतवासियों के लिए एक नया संविधान दिया, नई रचना दी, और तब कहीं जाके यहाँ एक अच्छा सुलभ वातावरण निर्मित कर पाए।
सर जी, जैसा कि आज संपूर्ण देश में, देशी में तो अभी तो संपूर्ण विश्व कोविड-19 के चलते चपेट में आया है, और इससे हमारा छिंदवाड़ा जिला और खासकर छिंदवाड़ा जिले का सौसर विकास खंड अधिकतर चपेट में आया है। हमारे सौसर विकास खंड से जो ग्रसित लोग है, वो साउथ या सौसर की दौड़ लगाते या छिंदवाड़ा की दौड़ लगाते है, जबकि वर्ष 2003 में सौसर में 100 बेड अस्पताल बना है। तो इन परिस्थितियों में आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप शासन से क्या मांग करना चाहोगे कि क्या सौसर सिविल अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया जाए, और बनाया जाए तो कैसा, और इसमें कौन सी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, सही प्रश्न दोहराया आपने। इस महामारी में शासन ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। यहाँ इतना बड़ा कोरोना प्रभाव है सौसर क्षेत्र में कि यहाँ कोविड सेंटर ही खोल देना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों को यहाँ परमिशन दी जा रही है, स्वीकृतियाँ दी जा रही है, और वहाँ भी निर्धारित रेट से कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक बार कोई पेशेंट यदि उन प्राइवेट अस्पतालों में गया तो लाखों के बिल उनके पास थमा दिए जाते हैं, और उनको एक समय में इस कोविड बीमारी के माध्यम से लूट लिया जाता है। मैं तो एक शासन, आपने जैसे शासन की बात की, तो मैं शासन स्तर पे ही एक प्रश्न उठाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत अधिग्रहित कर दी जाती है। किसी की यदि मान लो जमीन लेना है, अधिग्रहित कर दी जाती है। शासकीय सेवकों को अधिग्रहित कर दिया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए। उसी प्रकार से यदि ये मध्य प्रदेश में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको यदि अधिग्रहित कराकर इन कोरोना प्रभावित लोगों का इलाज कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ किसी को भी इससे परेशानी नहीं होगी और इलाज सुलभ और सस्ते में हो जाएगा।
बहुत अच्छी बात कही सर जी आपने कि किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है। तो स्वास्थ्य सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल है
जी।
हम बात कर रहे हैं सौंसा सिविल अस्पताल की, जो कि वर्ष 2003 में 100 बेड का बना है, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। अब वर्तमान में इसे 100 बेड का अस्पताल बनाना चाहिए तो कैसे?
बिल्कुल बन सकता है, ये राजनीतिक स्टंट वाली बात हो जाती है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 2003 की बनी है, आज उसको लगभग 17-18 साल होने जा रहे हैं और शासन स्तर पे उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन फिर भी जो मैंने सुझाव दिया है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में भरमसार रूप से जो इलाज किए जा रहे हैं, जनता से पैसा लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनको अधिग्रहित किया जाए उन डॉक्टरों की सेवाओं को, और उन 100 बेड वाले अस्पतालों में ली जाए सेवा, तो मैं कहता हूँ कि सभी को सेवा सुलभ हो जाएगी।
सर जी मेरा आपसे यह भी प्रश्न है
जी,
जिस तरह भारत में आयुष्मान योजना चलाई जा रही है
जी,
और उस आयुष्मान योजना को कोविड जैसे खतरनाक बीमारी को, जिससे लोगों को कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो इस बीमारी को लेकर आयुष्मान योजना का लाभ प्राइवेट अस्पतालों में भी इसे मिलना चाहिए?
बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, यदि जनता ही नहीं रहेगी तो काहे कहलाएगी। इसलिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत इसको अनिवार्यता जोड़ा जा सकता है।
यह थे हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू माननीय अशोक जी डोंगरे, जिन्होंने संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत परियोजना अधिकारी का बखूबी अच्छे से निर्वहन किया, साथ ही यह प्रधान पाठक भी रहे और वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, जिन्होंने आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जी की 130वीं जयंती पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर अपना महत्वपूर्ण संदेश दिया। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी की ओर से समस्त देशवासियों को आम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी।
धन्यवाद।